धवला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तीर्णये जिनेन मिऊं वेयण महाहियारम् विवहियारम् परुवेमोहम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा वेदना नामक खंड है, इस 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर हम आ गए, 31। देखो अभी अपनी बात चल रही है वेदना भाव विधान। वेदना भाव यानी वेदना का भाव, वेदना का अर्थात कर्मों का भाव, कर्मों का अनुभाग। तो ये जो कर्मों का अनुभाग है, उसमें हमने पदमीमांसा अधिकार देखा था, उसमें उत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, अनुत्कृष्ट आदि पद होते हैं, उसकी हमने चर्चा की थी। फिर स्वामित्व में उस किसके होता है उसकी बात देखी। अब ये अल्प भूतत्व तीसरा अधिकार है, तो उसमें हम पढ़ते हैं अप्पा बहुएत्ति तथ इमानी तिन्नी अनुयोगत दाराणी जहन्न पदे उक्कस पदे जहन्नुक्कस पदे। अल्प बहुत्व का प्रकरण है, इसमें ये तीन अनुयोग द्वार है, जघन्य पद विषय कल्प बहुत्व, उत्कृष्ट पद विषय कल्प बहुत्व, जघन्य उत्कृष्ट पद विषय अल्प बहुत्व। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये जो हमने अलग अलग कर्मों की मूल प्रकृतियों की बात चल रही है, पर किसके कहाँ जघन्य होता है, कहाँ उत्कृष्ट होता है, उसकी बात देखी थी। अब जो सभी कर्मों का जो जघन्य 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 अनुभाग होगा, मोहनीय का है, ज्ञानावरण का है, दर्शनावरण का है, अंतराय का वगैरह वगैरह, तो उसमें अल्प बहुत्व बता रहे हैं, किसका कम है, किसका उससे अधिक है, किसका उससे कितना अधिक है, वो बताएंगे यहाँ पर। देखो यहाँ तीन ही अनुयोग द्वार होते हैं, क्योंकि एक और दो संयोगी भंगों को छोड़कर यहाँ त्रिसंयोगी आदि भंगों का अभाव है। इसका अर्थ क्या है अश्विन भाई? हाँ देखो यहाँ पद दो ही है, जघन्य और उत्कृष्ट। तो जघन्य सिंगल है, उत्कृष्ट सिंगल लेंगे तो ये तो एक संयोगी यानी सिंगल प्रत्येक भंग हुआ। दो संयोगी यानी जघन्य उत्कृष्ट का एक साथ अल्प बहुत्व कहेंगे तो द्विसंयोगी, तीन बातें ही नहीं है तो त्रिसंयोगी का कोई सवाल नहीं है, तीन ही होते हैं उसके अंदर। स्लो आ रहा है, आवाज आता है तो फिर वो इसमें बढ़ जाता है। हेलो हेलो, हाँ देखते हैं, अभी आप देख लीजिए, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ आगे। 41 नंबर का सूत्र पढ़ना है, ऐसे भी आवाज ब्रेक हो रहा है इसमें। हाँ देखो अभी हम सूत्र पढ़ेंगे 41 नंबर का। जहन्य पदे न चाहिए, वेदे न हुआ है, अब नई पुस्तक में क्या है? सूत्र नहीं, पुरानी पुस्तक की बात थी, नए पुस्तक में क्या लिखा? वेदे न नहीं, पदे न चाहिए, जहन्न पदेन सौवत्थोवा। पुराने में भी और नई पुस्तक में भी यही भूल है, सौवत्थोवा मोहनीय वेणा भावदो जहन्निया। उसका हिंदी में अर्थ देखते हैं, जघन्य इस पद से भाव की अपेक्षा मोहनीय की जघन्य वेदना सबसे स्तोक है, यानी मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग सबसे कम है। अन्य कर्मों के जघन्य से मोहनीय का जघन्य सबसे कम है, ये कह रहे हैं। क्योंकि देखो देखो, मोहनीय का जघन्य अनुभाग कहाँ देखा हमने, याद है, दसवें के अंत समय में। और फिर वेदनीय का जघन्य अनुभाग चौदहवें के अंत में, असाता वेदनी के उदय वाले के ख्याल में। गोत्र का जघन्य वो हत समुत्पत्तिक वाला, जब निज गोत्र अकेला रहा था तब। और फिर आयु का जघन्य, हाँ, मनुष्य तीर्यंच, उत्कृष्ट नहीं, जघन्य मनुष्य तीर्यंच, अपर्याप्त की आयु बांधते हैं उसकी, ये तो हमने अलग अलग देखे थे। तो ये जो इनमें अभी अल्प बहुत्व लगाएंगे कि कौन सा जघन्य कम अनुभाग वाला है कंपेयर, हाँ, प्रकृतियों में सब प्रकृतियों के जघन्य का आपस में कंपैरिजन चल रही है, और ये मूल प्रकृतियों की बात है यहाँ पर, उसके उत्तर भेदों की चर्चा नहीं है। यहाँ तक समझ में, ये अल्पभूत किसका चल रहा है, सभी कर्मों के जघन्य जो अनुभाग है अपना अपना, उसमें कंपैरिजन चल रही है। हाँ देखो, अभी हम यहाँ पढ़ते हैं, खिड़की बंद करो तो आवाज आएगी अच्छी। तो ये हमने देखा था, अभी 41 नंबर हमने सूत्र पढ़ा था, उसका भी स्पष्टीकरण देखते हैं। क्योंकि अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण क्षपक गुणस्थानों में, अब मोहनीय का सबसे जघन्य क्यों है उसकी चर्चा कर रहे, उसको एक्सप्लेन कर रहे। तो अपूर्वकरण कौन सा गुणस्थान है, याद है मनीषा बेन, आठवां, एक क्षपक गुणस्थान, क्षपक श्रेणी की बात है। और अनिवृत्तिकरण है नौवां गुणस्थान, उसमें संख्यात हजार बार कांडक घात के द्वारा, देखो वहां स्थिति कांडक घात भी होते थे, अनुभाग कांडक घात भी होते थे, तो यहाँ के कांडक घात के द्वारा कितने बार, हजारों बार। हजारों बार कहते पर हमने उसमें हिसाब लगाया था कि एक स्थिति कांडक घात के काल में वो हजारों बार तो अनुभाग कांडक घात होते हैं, और ऐसे स्थिति कांडक घात भी हजारों बार होते हैं, हजारों बार यानी अनेक कोड़ा कोड़ी बार भी होते हैं। हाँ देखो, अपूर्वकरण पेज नंबर 31, क्योंकि अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण क्षपक गुणस्थानों में संख्यात हजार बार कांडक घात के द्वारा, ये अनुभाग कांडक की चर्चा यहाँ चल रही है। स्थिति कांडक भी होते हैं पर हमारा उस वो विषय अभी नहीं है यहाँ पर। अनुभाग को अनंत गुणाहीन करके, कांडक का अर्थ क्या होता है, कांडक होने में एक अंतर्मूर्त लगता है। तो पहले पहले तो अपूर्वकरण से कांडक घात शुरू हुए थे, और उसके बाद क्या होता है वो तो बताएंगे, प्रति समय अनंत गुणा घटेगा। पहले तो कांडक होते थे, तो कांडक घात के द्वारा अनुभाग को अनंत गुणाहीन करके, पश्चात स्पर्धगत अनुभाग की अपेक्षा, क्योंकि अभी तक तो ये सब अनुभाग जो था वो स्पर्धकों में था, इसको कहेंगे स्पर्धगत, क्योंकि अभी तक पूर्व संसार अवस्था से अभी भी अनुभाग किस रूप से है, तो स्पर्धक रूप से है। स्पर्धक रूप से हमने देखा था पहले, परमाणु को वर्ग कहेंगे, अनेक समान अविभाग वाले परमाणु के समूह को वर्गणा कहेंगे, एक एक अविभाग से बढ़ती हुई, प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। बीच में बहुत सारा अंतर चला जाता है, फिर दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं, परंतु ये सभी स्पर्धक रूप से रचना है। इसके आगे अनुभाग घटकर क्या होता है, अपूर्व स्पर्धक बन जाते हैं। पहले में देखो यहाँ ऐसा नहीं है, सत्ता में ही वर्गणाओं के समूह को ही स्पर्धक कहते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, फिर देखते हम। पश्चात स्पर्धगत अनुभाग की अपेक्षा उसे अनंत गुणा हीन करो, बीच में हीन शब्द है प्राकृत में न, अनंत गुणहीन बादर किट्टी सरुवेण, सेकंड लाइन में 41 सूत्र के नीचे उसमें लिखा हीन। हाँ, तो उसे अनंत गुणाहीन बादर कृष्टि रूप से करके, यहाँ बीच वाली विशेषताएं नहीं बताई स्टेप, पहले अपूर्व स्पर्धक होते हैं यानी उनका अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर स्पर्धक जैसे ही होते, पर संसार अवस्था में ऐसे स्पर्धक कभी नहीं थे, इतना अनंत गुणाहीन हो जाता है। अभी भी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आवाज आती नहीं, फिर इसके साथ वो टैली नहीं हो रही। हाँ, तत्पश्चात यानी उसको बादर कृष्टि करते, कृष्टि यानी वर्गणा और कृष्टि में क्या अंतर है, एक वर्गणा से ऊपर की दूसरी वर्गणा एक अविभाग प्रतिच्छेद से अधिक होती है। अब यहाँ स्पर्धकों के बदले कृष्टियों की रचना होगी, यानी एक एक संग्रह कृष्टि जिसको कहेंगे उसमें अनंत अनंत अंतर कृष्टियां होती है, परंतु एक कृष्टि से ऊपर की दूसरी कृष्टि अनंत गुणा अविभाग वाली, नीचे से ऊपर अनंत गुणा होते है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अनंत गुणा हीन हो जाएगी। हम यहां देखते हैं, देखो कि बादर कृष्टि रूप करके तत्पश्चात बादर कृष्टिगत उक्त मोहिनी के अनुभाग को, पहले बादर कृष्टि की जाती है और बादर कृष्टि के बाद सूक्ष्म कृष्टि बनाई जाती है, उसी की जघन्य बादर कृष्टि की अपेक्षा अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्टि रूप से करके, यानी बादर कृष्टियों में जो मिनिमम नीचे वाली कृष्टि थी उससे भी अनंत गुणाहीन करके सूक्ष्म कृष्टि बनाई जाती। एक समय में बहुत सारी कृष्टियां बनती है और वो एक से नीचे दूसरी अनंत गुणाहीन, उससे तीसरी नीचे अनंत गुणाहीन, इस तरह से कृष्टियों की रचना होती है। यानी पूरे सारा सत्ता में जो पड़ा हुआ अनुभाग जो मोहिनी का है वो सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाता है। सूक्ष्म कृष्टि रूप करके पुनः सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में, देखो ये तो उपशम श्रेणी में लोभ की सूक्ष्म कृष्टि की जाती है, शपक श्रेणी में तो क्रोध मान माया लोभ सभी की सूक्ष्म कृष्टि होती है, है ना? अभी उसमें बहुत सारे डिटेल्स है और फिर अकेले लोभ रह जाता है नौवे के अंत में, बाकी सभी की सपना हो जाती है, तो दसवें में वो सूक्ष्म कृष्टि का उदय है। अब उसके बाद क्या होता है देखो, तत्पश्चात बादर कृष्टिगत उक्त मोहिनी के अनुभाग को जघन्य बादर कृष्टि, यानी कृष्टियों बादर कृष्टियों में भी जो मिनिमम वाली है वो उसको कहेंगे जघन्य बादर कृष्टि, उससे भी अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्टि रूप से करके पुनः। अब सूक्ष्म सांप्रायिक में क्या होती है विशेषता, सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में वो अंतर्मूर्त काल है तो प्रति समय क्या होता है, प्रति समय अनंत गुणहीन क्रम से अपवर्तित करके, सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंतिम समय में उदय प्राप्त स्थिति के अनुभाग का यहां ग्रहण किया गया है। फिर से सूक्ष्म सांप्राय में क्या होता है, पहले तो एक एक अंतर्मूर्त में अनुभाग कांडक घात होता था और अभी क्या हो रहा है, एक एक समय में अनुभाग घटता है, अनंत गुणा घटता है, वहां तो अंतर्मूर्त लगता था, अब यहां तो एक समय में अनंत गुणाहीन, दूसरे समय में है उससे भी अनंत गुणाहीन, तीसरे समय में है उससे भी अनंत गुणाहीन, तो दसवें के अंत समय में मोहिनी का अनुभाग अत्यंत हीन हो जाता है, यही कह रहे हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंतिम समय में उदय प्राप्त स्थिति के, उदय प्राप्त स्थिति, स्थिति यानी निषेक, वो निषेक उदय रूप है, नेक्स्ट समय में बारहवें के पहले समय में वो निषेक नहीं रहेगा, ये दसवें गुणस्थान में सत्ता और उदय एक निषेक की है, इसको कहेंगे उदय प्राप्त स्थिति। अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया है यानी वो वहां पर जघन्य है, वो मोहिनी का जघन्य तब होता है, उसकी बात होती है, सत्ता और उदय, जो उदय रूप है उतनी ही सत्ता है, हाँ, ये आपका जो माइक है ना उधर रखना, जब बोलना है तब ले लेना, उसी जब बोलना है तब लेके बोलेंगे, उसकी आवाज आ रही है इसके अंदर। हाँ, अभी पूछते हैं शंका, प्रति समय अपवर्तना किस प्रकार की होती है? अभी आ रही, अच्छी, ठीक है। समाधान, हाँ, पहले से अनंत गुण, कांडक, कांडक के लिए प्रति समय कांडक होते ही नहीं है, कांडक का अर्थ ही अंतर्मूर्त लगता है, कांडक एक एक फाली से होता है, फाली ने एक एक लौट, परंतु पूरा स्पर्धक ही नहीं होता है, तब तक हम उसको अनुभाग घटा ऐसा नहीं कहेंगे, सत्ता में उस स्पर्धक में कुछ परमाणु तो रहेंगे ही रहेंगे। जब एक समय में अपवर्तनाघात होता है, अनुभाग घटता है, तो एक ही समय में जो अनंत ऊपर के अनंत स्पर्धक नष्ट हो जाते, नष्ट होते का अर्थ होता है परमाणु नष्ट नहीं हो गए, परमाणु सत्ता को छोड़कर नहीं जाएंगे, सत्ता में ही पने हैं, परंतु उसका अनंत उन परमाणुओं का अनुभाग अनंत गुना घीन हो जाता है, वो नीचे के स्पर्धकों के समान हो जाता है। दूसरे समय में अभी जितना शेष रहा उसका ऊपर के उत्पन्न अधिक अनुभाग वाले अनंत स्पर्धक उसके नीचे और चले आ जाएंगे, इस तरह से प्रति समय होता है। अभी स्पर्धक नहीं कहेंगे उनको, सूक्ष्म कृष्टि कहेंगे, एक स्पर्धक तो पहले ही चले गए थे, है ना। देखो समाधान फिर पढ़ती हूँ, शंका क्या पूछी थी, प्रति समय अपवर्तना, अपवर्तन यानी घटना किस प्रकार की होती है। समाधान, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय संबंधी अनुभाग की अपेक्षा, यानी नवे गुणस्थान के अंत में जो वहाँ सूक्ष्म लोभ का अनुभाग, वहाँ तो बादर था उदय रूप, परंतु सत्ता में तो सूक्ष्म बनाया था, क्योंकि हमने देखा था नवे के अंत में सूक्ष्म कृष्टि करने का कार्य चलता है, और उदय तो बादर कृष्टि का रहता है, और अंत में उसका अनुभाग उसने इतना हीन बनाया है। तो उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म सांप्रायिक का प्रथम समय संबंधी अनुभाग अनंत गुणा हीन होता है, उसके द्वितीय समय में वही अनुभाग कांडक घात के बिना अनंत गुणाहीन होता है। क्या कहा, सूक्ष्म सॉरी नवे गुणस्थान के अंतिम समय में जितना अनुभाग था, दसवें में आते ही पहले समय में वो अनुभाग अनंत गुणाहीन हुआ। कैसे हुआ, कांडक घात नहीं हुआ, एक समय में घटकर हुआ, इसको कहते कांडक घात के बिना, घात तो हुआ पर कांडक के रूप में घात नहीं हुआ, ये कहना चाहते। पुनः घात करने के बाद, वो धात दिख रहा है, घात करो, घात करने के बाद शेष रहा वही अनुभाग तीसरे समय में अनंत गुणाहीन होता है। अनंत गुणाहीन का अर्थ होता है अनंत विभाग शेष रहता है, हाँ, अनंत विभाग शेष रहता है अनुभाग। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय तक जानना चाहिए, दूसरे से तीसरे समय में अनंत गुणाहीन, उससे चौथे समय में अनंत गुण, पांचवे समय में, तो असंख्यात समयों में अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन होता है एक एक समय में, इसी का नाम समयापवर्तनाघात है। अब हम 32 पेज पर देखते हैं, वहां प्रश्न पूछते हैं, इसे अनुभाग कांडक घात क्यों नहीं कहते। समाधान, नहीं, क्योंकि प्रारंभ किए गए प्रथम समय से लेकर, यानी कांडक में क्या होता है, पहले समय से प्रारंभ होता है घात होने को, तो यहाँ हमने देखा था स्पर्धक हो या कृष्टि हो, उसमें एक एक कृष्टि में, अभी यहाँ कृष्टिया है, एक एक कृष्टि में अनंत परमाणु है, जो टॉप मोस्ट अधिक अनुभाग वाली जो स्पर्धक यानी जो कृष्टि है उसमें जो अनंत परमाणु है, उसमें से कुछ परमाणु पहले समय में नीचे आ जाएंगे, ये तो नवे के अंत तक होता ना, वहां तो बादर कृष्टिया थी, तो उसके एक समय में थोड़े परमाणु, दूसरे समय में थोड़े परमाणु, तीसरे समय में थोड़े, तो जो अंतर्मूर्त पूरा हुआ तब जाके वो सारी कृष्टिया ऊपर की इतनी नष्ट हो गई और अनुभाग नीचे के कृष्टियों समान हो गया, इसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। वही हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो फिर पढ़ते, प्रारंभ किए गए प्रथम समय से लेकर, ये किसका प्रथम समय है? अनुभाग कांडक घात का पहला समय। अंतर्मूर्त काल के द्वारा जो घात निष्पन्न होता है, निष्पन्न होता है ना, पूर्ण होता है, वो घात की क्रिया पूरी हो जाती है, वह अनुभाग कांडक घात है। परंतु उत्कीर्ण काल के बिना, उत्कीर्ण काल यानी ये अनुभाग कांडक होने के लिए, जो कांडक घात होने के लिए जितना काल लगता है उसको कहेंगे उत्कीर्ण काल। एक समय द्वारा ही जो घात होता है, यहाँ अनुभाग की ही चर्चा है, एक समय में जो घात होता है वह अनुसमयापवर्तना है। अनुसमय ने प्रति समय, दूसरे यानी दूसरी बात, अनुसमयापवर्तना में नियम से अनंत बहुभाग नष्ट होता है, यानी जितने अनंत वहाँ है, अभी दसवें गुण स्थान में अनंत कृष्टियां बनी है वहां पर, तो उसके अनंत बहुभाग ऊपर से नष्ट हो जाता है। यानी अनंत जो टॉप मोस्ट अनुभाग वाले अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों का घात हो जाएगा और वो नीचे के कृष्टि के समान हो जाएंगे। तो अनंत बहुभाग नष्ट होते, परंतु अनुभाग कांडक घात में यह नियम नहीं है, क्योंकि छह प्रकार की हानि द्वारा कांडक घात की उपलब्धि होती है। उसका अर्थ क्या है? ये जो कांडक होता है उसमें जो वहां के परमाणुओं का अनुभाग घटता है, तो कैसा घटेगा? तो अनंतवा भाग भी घट सकता है, असंख्यातवा भाग भी घट सकता है, संख्यातवा भाग, संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, अनंत गुणा, ये छह प्रकार की हानि हो सकती उसमें। परंतु अनुसमयापवर्तना में अनंत गुणा का ही नियम है, अनंत गुणा हानि होती है। इसी का विशेषार्थ बताते हैं। यहाँ अनुभाग कांडक घात और अनुसमयापवर्तना, इन दोनों में क्या अंतर है, इस पर प्रकाश डाला गया है। कांडक पोर को कहते हैं, पोर समझते हैं, इतना टुकड़ा, ये जो है हमारे उंगली है उसमें एक पोर है, दूसरा है, तीसरा, ये आप गन्ना खाते हो ना, तो गन्ना इसमें बीच बीच में ऐसा हो जाता है, हाँ, उसको क्या है, क्या कहेंगे, वो गांठ आती है, एक गांठ से दूसरे गांठ क्या कहेंगे उसको, एक पोर कहेंगे, उसको एक कांडक कहेंगे, एक टुकड़ा कहेंगे। तो कहे के कांडक पोर को कहते हैं, कुल अनुभाग के हिस्से करके एक हिस्से का, यानी हम जो कुल अनुभाग जो है, टोटल अनुभाग जो है, जैसे हम पानी का टेम्परेचर डिग्रीज में मापते हैं, 100 डिग्रीज, अभी जो 100 डिग्री है वो एक समय में कितने हो जावे, 70 डिग्रीज हो जावे, मान लेते हैं, एक समय में 50 डिग्री हो जाएंगे, एक समय में 20 डिग्री हो जाए, तो बहुत सारा हो जाएगा ना। और ऐसे हम कैसे पानी थोड़ा 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 कम हो जाता है, परंतु यहाँ एक साथ एट ए टाइम घटना, उसको कहेंगे अनुभाग का घटना। कितना घटता है? जितना अनंत था अनंत, उसमें से अनंत तो नष्ट हो जाता है, अनंत वे भाग प्रमाण शेष रहता है, यही कह रहे। देखो अभी कांडक में क्या होता है, पूरे टोटल घात नहीं होता है, कुछ परमाणु का घात होता है, घात होता है का अर्थ होता है अनुभाग घटता है, परमाणु जीव को छोड़कर नहीं जा रहे, सत्ता में ही बने हैं, अपने अपने निषेक में ही है, मतलब तो उसका अनुभाग घट रहा है, पहले समय में कुछ परमाणु, दूसरे समय में कुछ परमाणु, तो टोटल जो उत्कृष्ट की तरफ का अनुभाग है वो घटने के लिए अंतर्मूर्त लगता है। इसको कहते हैं फाली क्रम से, यानी एक एक लॉट एट ए टाइम उसका घटेगा। तो कहते हैं कि फिर से कुल अनुभाग के हिस्से करके एक हिस्से का फाली क्रम से अंतर्मूर्त काल द्वारा अभाव करना, अभाव करना कहो घात करना, अनुभाग कांडक घात कहलाता है। और प्रति समय कुल अनुभाग के अनंत बहुभाग का अभाव करना, उसको कहेंगे अनुसमयापवर्तना कहलाती है। मुख्य रूप से यही इन दोनों में अंतर है। और ये ऐसी अनुसमयापवर्तना क्यों होती है? क्योंकि विशुद्धि बहुत ज्यादा है इसलिए। अनुसमयापवर्तना, हाँ, प्रति समय घटता है, प्रति समय अनंत, हाँ, अनंतवा भाग शेष रहता है एक एक समय में, जितना है उसमें अनंत बहुभाग की कटौती हुई, अनंतवां भाग शेष रहा। फिर अनंत जितना शेष रहा उसमें भी अनंत भाग करना, अनंत चले जाएंगे अनंतवां शेष रहेगा। इस तरह से अभी 42 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। अंतराय वेयणा भावदो जघन्या अनंत गुणा। अंतराय की जघन्य अनुभाग उसका कब देखा था याद है? अंतराय का जघन्य अनुभाग हाँ दसवें में बंद बंद है वो तो सत्व बार, जैसे मोहनी का बंद था नौवे तक परंतु दसवें के अंत में हाँ, तो वो ज्ञानावरण दर्शन अंतराय का दसवें में बंद हुआ था परंतु वो तो घटते 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 बारहवें में चला गया था, वो भी अनंत गुना घटा था वहां पर। देखो हमने ऊपर पढ़ा ना, अंतराय वेणा भाव दो जहन्य अनंत गुना, उससे भाव की अपेक्षा अंतराय कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। हमने उसको दो नंबरिंग किया है, अल्पभूतव में पहले नंबर पर मोहनीय की जघन्य, दूसरे नंबर पर अंतराय का जघन्य अनुभाग वाला। परंतु उसका अनुभाग जो हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं वो उससे अनंत गुणा है। मोहनीय के जघन्य से अंतराय का जघन्य अनंत गुणा है। क्षीण कषाय काल के भीतर यद्यपि अंतराय कर्म का अनुभाग अनुसमयापवर्तना के द्वारा घात को प्राप्त हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे मोहनीय में क्या क्या हुआ था याद है ना? पहले तो अनुभाग कांड घात हुए थे और दसवें में अनुसमय अपवर्तना हुए थे, अब अंतराय में बारहवें में हुए अनुसमय अपवर्तन। पर मोहनीय में तो स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक हुए थे और अपूर्व स्पर्धक के बाद बादर कृष्टि हुई थी, बादर कृष्टि के बाद सूक्ष्म कृष्टि हुई थी। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, स्पर्धक रूप से ही थे और बारहवें में आकर अनुसमय अपवर्तना घात हो गया है। तो भी यह अनुभाग मोहनीय के जघन्य अनुभाग से अनंत गुणा है, क्योंकि वह मोहनीय की सूक्ष्म और बादर कुष्टियों की अपेक्षा अनंत गुणे स्पर्धक रूप है। क्योंकि स्पर्धक से अनंत गुणाहीन अपूर्व स्पर्धक थे, उससे अनंत गुणाहीन बादर कुष्टि थे, उससे अनंत अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कुष्टि थे, और ये स्पर्धक रूप से ही है ये कहना चाहते हैं। शंका, अनुभाग कांड घात और अनुसमयापवर्तना घात के द्वारा, वो घात बराबर लिखो, दोनों कर्मों में समानता के होने पर घात करने के बाद शेष रहे अनुभागों में विसदृशता क्यों पाई जाती है? उसमें भी अनुसमयापवर्तना घात हुआ, यहाँ पर भी हुआ था, वहां पर भी कांड घात हुए, यहाँ पर भी हुए थे, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में सर्वत्र संज्वलन लोभ के अनुभाग की अपेक्षा वीर्यांतराय का अनुभाग अनंत गुणा उपलब्ध होता है। देखो ये प्रकृति के उसका अपना अपना स्वभाव है, उसका अपना अपना अनुभाग संसार अवस्था में भी कैसे पाया जाता है उसका भी अल्पभूतो दंडक बताएंगे बाद में, यहाँ थोड़ी उसकी झलक बता रहे कि हमेशा ही। अभी यहाँ श्रेणी की बात छोड़ दो, संसार अवस्था में भी संज्वलन लोभ के अनुभाग की अपेक्षा, क्योंकि उसके एक एक प्रकृति के अनुभाग, उससे जो वीर्यांतराय का अनुभाग है वो अनंत गुणा होता है, इसलिए यहां पर भी उसको अनंत गुणा कह दिया। स्तोक यानी अल्प, स्तोक अनुभाग वाली प्रकृति का घात करने के बाद शेष रहा अनुभाग स्तोक होता है। क्या कहते हैं? पहले ही संज्वल ऐसे भी लोभ का अनुभाग सबसे कम था वीर्यांतराय से, अब घात करने के बाद वो शेष रहा वो भी कम ही रहेगा, और जो पहले से अधिक था वो घात करने के बाद अधिक ही रहेगा। तो कहते स्तोक यानी अल्प अनुभाग वाली प्रकृति का घात करने के बाद, घात यानी अनुभाग घात हो, प्रकृति का घात नहीं हुआ है। हाँ, शेष रहा अनुभाग, स्तोक होता है, और महान अनुभाग वाली, महान यानी अधिक अनुभाग वाली प्रकृति का घात करने के बाद शेष रहा अनुभाग बहुत ही होता है। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात तो वो स्पर्धक और उसकी भी बात की थी, कृष्टि भी बनी थी उसमें, इसमें कृष्टिया भी नहीं बनी थी, इस कारण दोनों में विसदृशता बन जाती है। अब 43 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे हम। नानावर्णीय दंशनावर्णीय वेयणा भावदो जहनियाओ वी दोवी तुल्लाओ अनंत गुणाओ, उससे भाव की अपेक्षा, ये तीन नंबर देना इसको। ज्ञानावर्णीय व दर्शनावर्णीय की जघन्य वेदनाएं भी दोनों ही परस्पर तुल्य होकर अनंत गुणी है। ये कहां पर जघन्य थी याद है, 12वें के अंत में, और वो अंतराय वो भी वहां पर एक ही समय में, तीनों एक ही समय में होने पर भी अंतराय के जघन्य से ज्ञानावरण दर्शनावरण का जघन्य अनंत गुणा है, अनंत गुणा ज्यादा है ना। देखो शंका यहां लिखकर, भाव की अपेक्षा ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी की जघन्य वेदनाएं भी दोनों ही परस्पर तुल्य होकर अनंत गुणी है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, अंतराय से। फिर शंका, घात करने के बाद शेष रहे इन दोनों प्रकृतियों के अनुभाग में समानता किस कारण से है। अभी अंतराय से ज्यादा है तो वो प्रश्न बाद में पूछेंगे, परंतु ये दोनों में समानता क्यों है ये पूछ रहे। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में ये दोनों प्रकृतियां समान अनुभाग वाली है। ये तो भगवान के ज्ञान में आया है, उन्होंने बताया और आचार्यों ने लिख के रखा है, तो उसमें हमारा कोई दिमाग नहीं चलता क्यों क्या, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है उसका यहाँ कथन आता है, और ये सब आगे बताएंगे कौन सी प्रकृतियों का अनुभाग कौन सी प्रकृति से कितना ज्यादा होता है। तो कहते हैं, संसार अवस्था में ये दोनों प्रकृतियां समान अनुभाग वाली है, अशुभ स्वरूप से समान है, एवं समान अनुभाग घात से संयुक्त है। यानी अशुभता अशुभ रूप से भी समान है, क्योंकि घात ये सारे अशुभ ही है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण में ऐसे भी समानता है, यानी उसमें भी अशुभ के लेवल कम ज्यादा नहीं है। जैसे मोहिनी अति अप्रशस्त कहने में आता है, इसे वो पहला चला गया है। एवं समान अनुभाग घात से संयुक्त है, दोनों में जो घात होता है वो भी समान है, पहले भी समान अनुभाग था और घात भी इक्वली हुआ है, इसलिए जो शेष रहा वो भी इक्वल रह जाता है। अतः उक्त दोनों प्रकृतियों के घात करने के बाद शेष रहे अनुभागों के समान होने में कोई विरोध नहीं आता। पहला प्रश्न था समान क्यों है, उसका उत्तर बता दिया। अब शंका, संसार अवस्था में इन दोनों प्रकृतियों का अनुभाग, संसार अवस्था में जब तक क्षेप श्रेणी में नहीं आए थे तभी की बात है, रेगुलर अवस्था में दोनों प्रकृतियों का अनुभाग समान होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है। बारंबार प्रमाण पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रूफ, तो आगम का प्रमाण पूछ रहे यहां पर। समाधान, केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय और वीर्यांतराय, ये चारों ही प्रकृतियां तुल्य है। ये उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग का अल्पभूतव दंडक, दंडक यानी उसकी लिस्ट बाद में बताने वाले हैं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। इन इस 64 पद वाले महादंडक सूत्र से जाना जाता है। सूत्र में ही ये उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग किसके कौन सा किससे ज्यादा है वो 64 अलग अलग पद उसके बताए हैं, उसके द्वारा ये जाना जाता है इन सबका समान अनुभाग है। शंका कहे, फिर पूछ रहे, यह सब तो बन जाता है, किंतु अंतराय के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा, वो घ बराबर करो जघन्य वाला, अंतराय के जघन्य पद की अपेक्षा, अनुभाग की अपेक्षा ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जघन्य अनुभाग अनंत गुणा होता है, यह नहीं बनता, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बताया था केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण वीर्यांतराय इनका सब समान है। हा? तो अभी आप कह रहे उसके जघन्य से यह जघन्य अनंत गुणा है, क्योंकि सब लोगों का जघन्य का स्वामित्व भी वही है बारहवें के अंत समय में, इसलिए शंकाकार पूछता है ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि ये तीनों कर्म संसार अवस्था में अनुभाग की अपेक्षा समान है, क्योंकि वो अभी अभी आचार्य ने बताया है और वो अल्प बहुत जो दंडक है महादंडक उसके आधार से वो बता रहे। तथा अनुभाग कांडक घात व अनुसमयापवर्तना घात की अपेक्षा भी समान है, यहाँ भी धात हुआ है वो घात करना बराबर है। बंदे की बात नहीं है, घात की बात है, सबका चल ही रहा है। अपूर्वकरण गुणस्थान से आयु को छोड़कर सभी सातों ही कर्मों में स्थिति कांड घात, अनुभाग कांड घात, अनुभाग कांड घात अप्रशस्त में होते हैं, स्थिति कांड घात शुभ और अशुभ दोनों कर्मों में होते हैं। तो वो अपूर्वकरण गुणस्थान से बात चल ही रही थी, तो कहते इनमें भी घात हो रहा था, उनमें भी हो रहा था, पहले सबका अनुभाग समान था और अब लास्ट में जाकर इसका जघन्य से उसका जघन्य अनंत गुना क्यों कहते हो, ये उनका प्रश्न है। अतः उनके विषदृश होने में विरोध आता है, तो इसको संशय है कि ऐसा क्यों कहते हैं, आपकी कहीं भूल होती होगी ऐसा लगता है ना। समाधान, यदि वीर्यांतराय कर्म सर्वघाती रूप से केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के समान होता, क्या कहा, यह अंतराय कर्म कैसा है, ये सर्वघाती देशघाती समझते हैं, देखो तो सातावेदनीय सर्वघाती है क्या असातावेदनीय सर्वघाती है, देशघाती है दोनों ही। वेदनीय तो अघाती है, देशघाती और सर्वघाती घाती कर्मों में होगा बराबर है। तो घाती कर्म कौन कौन से है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरण के तो कैसे देखो, देखो उसमें उत्तर प्रकृतियों को सोचना पड़ता है। चार ज्ञानावरण जो है वो देशघाती है, देशघाती का अर्थ पूरा घात नहीं करते, जैसे हमारा मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है और वो हमारा ज्ञान भी खुला है और मित्र ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का उदय भी चल रहा है, तो ये प्रकृतियां कैसी है, देशघाती प्रकृतियां। अभी उसके क्षोभ में डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि प्रकृति देशघाती होने पर भी उसमें कुछ स्पर्धक सर्वघाती देशघाती होते हैं, तो उसकी अपेक्षा अगर हम छोड़ भी देते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं कि ये कैसी प्रकृतियां है, देशघाती प्रकृतियां। तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, केवल दर्शनावरण और अन्य जो निद्रा है वो सर्वघाती है, मोहिनी में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और जो बारह कषाय वो सर्वघाती है, बाकी देशघाती प्रकृतियां हैं। और यहाँ कहते हैं कि कौन से अंतराय कर्म, अंतराय के पांचों ही देशघाती प्रकृतियां हैं। यहां तक समझ में आई बात। अब कहते हैं यदि वीर्यांतराय कर्म सर्वघाती रूप से ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के समान होता तो इन तीनों में समानता अनिवार्य थी। उसकी जैसे यह सर्वघाती प्रकृति नहीं है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वीर्यांतराय का सर्वत्र क्षोभम पाया जाता है। एक क्षोभम वाला जो भाव है वो देशघाती प्रकृतियों में ही घटित होता है, ही कहा मैंने। अब ये क्षोभम क्या है उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन उसके बिना ये चर्चा ही समझ में नहीं आ जाएगी। ये जो देशघाती प्रकृति है, अभी हम ये वीर्यांतराय की बात छोड़ देते हैं, हम मति ज्ञानावरण पर घटित करते हैं। तो मति ज्ञानावरण प्रकृति कैसी है, देशघाती प्रकृति है। पहले में हमने प्रकृतियों में बंटवारा किया था, प्रकृतियां जो होती है, प्रकृतियां ये कौन सी प्रकृतियां, घाती की प्रकृतियां, वो दो प्रकार की होती है। प्रकृति में मैं डिफरेंस कर रहे हैं, एक होती है सर्वघाती, ये प्रकृतियां सर्वघाती है, और दूसरी होती है देशघाती प्रकृतियां, ये प्रकृतियां ही देशघाती है। यहां तक समझ में। अभी सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी है, केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण निद्रा है, मिथ्यात्व वगैरह है, तो इनके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। तो इनका उदय है तो प्रतिपक्ष का पूरा घात है। प्रतिपक्ष है ना, केवल ज्ञानावरण का प्रतिपक्ष कौन है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को वहां नहीं हो रहा है, नहीं होने देता। ये तो हम निमित्त की तरफ से कर्णानियुक्त की भाषा में बोल रहे हो। तो कहते हैं कि ये सर्वघाती है, उसका उदय रहेगा तो कैसा रहेगा? तो वो प्रतिपक्ष का पूरा घात करेगा। तो केवल ज्ञान कब प्रकट होगा? ये नहीं रहेगा पूरा ही, समझ में। अब देशघाती जो प्रकृतियां हैं उसमें क्या होता है, इसका उदय भी चले और उसका प्रतिपक्ष का कार्य भी चले ही हो सकता है, पर उसमें भी दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं। देशघाती में कुछ तो सर्वघाती होते हैं, अभी सर्वघाती स्पर्धक कह रही हूं मैं, पहले मैं देशघाती प्रकृति कही थी। देशघाती प्रकृति में जो स्पर्धक है उसके, वो कुछ तो सर्वघाती होते हैं और कुछ तो देशघाती होते हैं स्पर्धक। अभी हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ज्ञानावरण कर्म जो है उसमें से मति ज्ञानावरण जो भेद है उसका, वो कैसा है, देशघाती के सर्वघाती है? देशघाती प्रकृति है, उसमें स्पर्धक कौन कौन से हो गए? सर्वघाती भी हो गए और देशघाती भी हो गए। अभी मति ज्ञान से रहित कोई जीव है क्या जो सदमस्त अवस्था में? नहीं, सभी को मतिशुद्ध ज्ञान तो है ही है। तो मति ज्ञानावरण का सर्वघाती का उदय कभी पाया जाता है कौन से जीव को? किसी को नहीं होगा, क्योंकि सर्वघाती का उदय हो जाए स्पर्धकों का तो जीव जड़ हो जाएगा। तो वो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त भी, वो मिनिमम ज्ञान वाला जो पर्याय ज्ञान वाला, उसके भी ये सर्वघाती का उदय नहीं होगा, तो उसको देशघाती का उदय होगा। परंतु ये तो बांधे है ना, बांधे भी सर्वघाती देशघाती दोनों का बंध हुआ था, सत्ता में भी दोनों पड़े थे, अब उदय भी दोनों का आने वाला है। तो ये उदय रूप जो ऐसे निषेक रचना पड़ी है सत्ता में, ये उदय को बता रहे हैं। अभी ये उदय रूप है और ये दूसरे समय में ऊपर पड़ा है, तो ये जो सर्वघाती ऊपर सभी पड़े हैं सर्वत्र, ये सर्वघाती सर्वत्र पड़े हैं अपने अपने निषेकों में। जब उसका उदय आता है तो देशघाती टर्न होकर उदय में आता है। परमाणु तो जा रहे है, तो ये क्षोभशम की परिभाषा ऐसी है कि वर्तमान कालीन यानी वर्तमान जो उदय रूप निषेक है उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का जो ऊपर पड़े, उदयाभावी क्षय, उसका अपने रूप से उदय नहीं होना परंतु परमाणु तो खिर जाना, इसी को कहें उदयाभावी क्षय। अब कहते परंतु वो भविष्य में है ना, हाँ, उन्हीं स्पर्धकों का यानी वो सर्वघाती स्पर्धकों का सत्ता में बना रहना, उसको कहेंगे सदवस्था रूप उपशम। उपशम का अर्थ है उदय में नहीं आना, अपने अपनी जगह बने रहा, इसी को कहा यार कैसा उपशम है, सदवस्था रूप उपशम। अब तीसरी अवस्था है उदय किसका चलेगा, देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये तीनों ही अवस्था जहां होती है उसको यह क्षोपशम कहते हैं। तो वीर्यांतराय का संसार अवस्था में क्षोपशम ही होता था, और केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण का तो सर्वघाती है यानी उसका तीव्रता ज्यादा है उसकी। वीर्यांतराय में भी सर्वघाती स्पर्धक थे इसलिए संसार अवस्था में तीनों का अनुभाग समान कहा था, एक बात तो ये थी। परंतु उसमें जो देशघातीकरण नाम का प्रोसेस हुआ था, कभी हुआ था याद है? नवे गुणस्थान में हुआ था ना, नवे गुणस्थान में हमने देखे थे क्षपक श्रेणी में, वो देशघातीकरण होता है यानी वो सत्ता में पड़ा हुआ देशघाती रूप हो जाता है। पर केवल ज्ञानावरण का अनुभाग कितना भी कम क्यों ना हो, वो कभी भी देशघाती नहीं होगा, ये हमने देखा था। केवल ज्ञानावरण, ज्ञानावरण में सभी प्रकृति आई कि नहीं आई? ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण वो सारी देशघाती हो जाते, उसके सर्वघाती स्पर्धक देशघाती हो जाते श्रेणी में। परंतु केवल ज्ञानावरण का कितना भी मंद क्यों ना हो, वो सर्वघाती रूप से ही बने रहेंगे। तो ये जो कोई उसमें अनुभाग कांड घात हुए थे और ये अनुसमय अपवर्तन हुआ था, तो वो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण उसमें तो लगेगा। केवल ज्ञानावरण तो कितना भी मंद हो जाए तो उसमें तो सर्वघाती रहेगी ही रहेगी। हमने देखे ना सर्वघाती में कौन से होते हैं, नीचे के लता, दारू, अस्थि और शैल, ये तो दारू का अनंत भाग वो लता रूप होता है, ऊपर के जो अनंत बहुभाग है वो सर्वघाती रूप से होता है। तो केवल ज्ञानावरण कितना भी मंद हो जावे वो देशघाती नहीं हो सकता। इसलिए जब लास्ट में उसका अनुभाग शेष रहा है वो अनंत गुना ही रहेगा, ये कहना चाहते। अब हम यहां से पढ़ेंगे, पहले मैंने मेरी भाषा में बता दिया। देखो शंकराचार्य ने यह भी पूछा था ना कि संसार अवस्था में तीनों का उत्कृष्ट अनुभाग तो समान कहा था, क्योंकि उसमें भी सर्व देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक तो थे ही थे, उसमें भी शैल वाले तो पाए जाएंगे, ये तो इसका प्रश्न था। तो बाद में जघन्य होते होते उसमें क्यों अनंत गुणा का डिफरेंस पड़ा, ये प्रश्न था। अब उसका समाधान नीचे, यदि वीर्यांतराय कर्म सर्वघाती रूप से केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के समान होता तो, यानी वीर्यांतराय कैसा है, देशघाती कर्म है, प्रकृति देशघाती है, अगर वो सर्वघाती प्रकृति होती तो किसके समान, केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण के समान, तो इन तीनों में समानता अनिवार्य थी। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वीर्यांतराय का सर्वत्र क्षोभशम पाया जाता है, अभी इसका अर्थ समझ में है, वो देशघाती प्रकृति है और उसका सर्वघाती का कभी उदय भी नहीं होगा, देशघाती रूप से उदय में आती है, तो इस देशघाती प्रकृति है। अतएव चूंकि वीर्यांतराय कर्म लिखो बराबर देशघाती लक्षण वाला है, इस कारण वह एरंड दंड के समान निस्सार होने से, एरंड दंड क्या होता है, एरंड का झाड़, तो उसकी जो डंडी होगी स्टेम्स वो अंदर से जैसे हॉलो होती है, यानी तो हाँ पोकड़ा भी मराठी में कहेंगे, तो वो तो दबाने पे दब जाएगी, और कोई चीज होती कठिन होती है जैसे वज्र है या कोई पत्थर है तो कैसा होता है, कड़क होता है, उसको दबा नहीं सकते, यही कह रहे। वह एरंड दंड के समान निस्सार होने से बहुत घाता जाता है, उसमें से पहले से सार नहीं है तो उसका घात भी ज्यादा होता है, किंतु केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, अतः वे वज्र शैल के समान निबिड़ रूप से बंध को प्राप्त होने के कारण, वज्र शैल यानी जो पत्थर है वज्र है वो कैसे होता है, अंदर पूरा सॉलिड होता है ना, तो कहते उसके समान निबिड़ यानी वो बिल्कुल घन रूप बंध को प्राप्त होने के कारण, यानी उसका अनुभाग इतना तीव्र होने के कारण बहुत नहीं गाते जाते। इसलिए अंतराय कर्म के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा ज्ञानावरण और दर्शनावरण के जघन्य अनुभाग का अनंत गुणा होना उचित ही है। यह बाकी चर्चा नहीं की क्योंकि छपनासार का विषय तो यहाँ है ही नहीं है, परंतु हमने देखा था ये जो देशघाती करण नाम का एक करण आता है, करण यानी एक प्रोसेस होता है नवे गुण स्थान में, वहां ये सब देशघाती प्रकृतियों में जो सर्वघाती स्पर्धक थे वो सारे देशघाती हो जाते हैं, और उसमें भी और कांडघात होते रहते हैं। अब 44 नंबर का सूत्र, आवो वेयणा भावदो जहन्य अनंत गुणा। पहला नंबर मोहनीय का लगा था, दूसरा अंतराय का, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण, अब आयु का, तो कहते उनसे भाव की अपेक्षा, चार नंबर डालना है इसको, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण को हमने सिंगल एक लाइन में रखा था तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आयु कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है, वो जघन्य वेदना किसके, वो लब्धिया पर्याप्त की आयु बांधी थी ना उसके, तो जघन्य वेदना थी। मनुष्य अथवा पंचेंद्रिय तीर्यंच योनि वाले जीव के द्वारा, तीर्यंच योनि वाले ने तीर्यंच जीव के द्वारा, पंचेंद्रिय तीर्यंच के द्वारा परिवर्तमान मध्यम परिणामों से बांधी गई। हमने देखा था कि आयु का बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होता है। अपर्याप्त तीर्यंच संबंधी आयु अनुभाग की अपेक्षा जघन्य होती है। एक स्वामित्व बताया जो हमें याद करने के लिए दोबारा बताया यहाँ पर, यह उपर्युक्त उपर्युक्त ने ऊपर बताए हुए कौन से ज्ञानावरण दर्शनावरण उपर्युक्त दोनों कर्मों के जघन्य अनुभाग से अनंत गुणी है, क्योंकि जिस प्रकार क्षपक श्रेणी में ज्ञानावरण और दर्शनावरण का अनुभाग कांडक घात व अनुसमयापवर्तनाघात के द्वारा घात को प्राप्त होता है, उस प्रकार उनके द्वारा आयु कर्म का अनुभाग घात को नहीं प्राप्त होता। इसलिए आयु कर्म की जो जघन्य वेदना है वो अनंत गुणी बताई। अब 45 नंबर का सूत्र, गोद वेयणा भावदो जहन्या अनंत गुणा। उससे भाव की अपेक्षा गोत्र कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। गोत्र कर्म की जघन्य याद है? देखो, ये जो अशुभ यानी जो घाती है उसमें तो अनुभाग को सोचना आसान है, मूल प्रकृतियों में हो और उसमें जघन्य उत्कृष्ट कहना। जब अघाती हम कहते हैं तो उसमें आयु को तो छोड़ो अलग, तो उसमें तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियां। और सत्ता, जब हम अशुभ को कहने जावे तो सत्ता में अगर शुभ पड़ी है तो उसका अनुभाग अनंत गुना होगा, तो जघन्य कैसे घटित करेंगे? तो ये हमको वेदनीय के बारे में भी ऐसा प्रसंग आया था, गोत्र के बारे में भी आया था, आपको याद होगा। तो जब सत्ता में एक ही अकेली प्रकृति रह जाए उनमें से अशुभ वाली, तो वेदनी में असाता रह जाएगी अकेली। वो कब होगा? 14वें के अंत में, असाता के उदय वाले के। और उच्च नीच गोत्र में अकेला नीच गोत्र रह जाना चाहिए। वो कब होता है? अग्नि का एक, वायु का एक, जब वो उच्च गोत्र की उद्वेलना कर देता है तब। ये हमने पढ़ा था पहले स्वामित्व में। तो देखो, ये फिर याद दिला रहे। और ऐसा जो तेज का एक, वायु का एक, जिन्होंने उच्च गोत्र की उद्वेलना की, अभी सत्ता में उच्च गोत्र नहीं है और वो हर समय नीच गोत्र ही बांधता है, वो जब सर्व विशुद्ध होगा तो जघन्य अनुभाग बांध देगा, क्योंकि उसके भी संकलेश विशुद्धि उसके योग्य होते रहते हैं। तो उस संकलेश होगा तो नीच गोत्र अशुभ है उसका अधिक अनुभाग बांधेगा, और वो जब विशुद्ध होगा उसकी अपेक्षा जितनी विशुद्धि हो सकती है तब वो नीच गोत्र का अनुभाग कम बांधेगा। देखो, जो सर्व विशुद्ध है, हत समुत्पत्तिक कर्मा है, क्योंकि जो उसमें जन्मा था तो अधिक अनुभाग सहित आया था तो उसने सब अनुभाग घटाया है उसका। और जिन्होंने उच्च गोत्र का अपवर्तना घात किया है, अभी हम इसका अर्थ समझते हैं ना, उद्वेलना के द्वारा वो नष्ट किया है, ऐसे बादर तेज कायिक व वायु कायिक पर्याप्त जीवों में, क्योंकि अधिक विशुद्धि पर्याप्तों के होती है इसलिए पर्याप्त को लिया। गोत्र कर्म का अनुभाग जघन्य होता है, उसका कारण हमने देखा था। यहाँ यद्यपि संख्यात हजार अनुभाग कांडक घात हुए हैं, तो भी गोत्र कर्म का घात करने के बाद शेष रहा अनुभाग आयु के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा है। यतः यतः करते क्योंकि चतुष्षष्ठी पदक, चतुष्षष्ठी यानी 64, चतुष्षष्ठी पदक का अर्थ होता है 64 पद वाले दंडक में। ये अनुभाग का दंडक वाला, इसको महादंडक कहेंगे, 64 पद वाला दंडक कहेंगे। जैसे हमने अवगाहना वाले जो एक से दूसरे अवगाहना वाले जो दंडक देखा था, वहां पर भी 64 वाले स्थान थे, आपको याद होगा। तो अवगाहना के भेद, अब यहाँ पर भी अनुभाग की अपेक्षा उसके भेद कर रहे हैं। इसको कहते हैं 64 पद वाला दंडक, दंडक यानी हमारी भाषा में उसकी लिस्ट। तो चतुष्षष्ठी पदिक दंडक में, अभी इन्वर्टेड में लिखा है, देखो, सर्वोत्कृष्ट तिर्यक आयु के अनुभाग से सर्वोत्कृष्ट नीच गोत्र का अनुभाग अनंत गुणा है। क्या कहते हैं इसमें? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट का अनुभाग की कंपैरिजन की है। तिर्यक आयु में जो उत्कृष्ट अनुभाग है उससे नीच गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणा है, ये कह रहे हैं। ऐसा कहा गया है। अतः इससे जाना जाता है, बिल्कुल जो उत्कृष्ट में हम अल्प बहुतो बताए वही जगने में बता रहे कि थे अतः, यानी वहां उन्होंने वो महादंडक का आधार लेके बताया, वहां उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अनंत गुना बताया है। अतः इससे जाना जाता है आयु के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा निज गोत्र का जघन्य अनुभाग बंध अनंत गुणा है। उससे निज गोत्र का जघन्य अनुभाग अनंत गुणा है क्योंकि वह द्विस्थान सत्कर्म रूप है। द्विस्थान सत्कर्म रूप कहेंगे आप अश्विन भाई, कौन से दो स्थान? आघाती के अप्रशस्त है इसलिए आपको पूछा। देखो ये स्पर्धकों को हम चार चार नाम लेके, घाती कर्मों के चार नाम कौन से मालूम है? घाती के चार, घाती सभी अशुभ है, लता, दारू, अस्थि और शैल, है ना? और आघाती में अभी प्रशस्त और अप्रशस्त दो, प्रशस्त के गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, और अघाती के अप्रशस्त नीम, कांजी, विष और हलाहल। यही कह रहे हैं निज गोत्र का जघन्य है। हाँ? क्या क्या किरमिजी वगैरह जो है ना, वो तो शक्ति के भेद कषायों के हैं, वो लोभ वाले में आया था। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ जो है उसकी शक्ति की अपेक्षा चार चार भेद बताए, मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर, इस तरह से उसके भेद बताए हैं। तो क्रोध में अलग उपमा दी थी, मान में अलग उपमा दी थी, माया में अलग और लोभ में, वो वहां सबसे सर्वोत्कृष्ट लोभ है तो उसमें वो किरमिज रंग वाली बताई थी, कृमि राग उसको कहा था। फिर दूसरा वाला कौन सा था? चक्रमल, भूल गए? हाँ, वो हरिद्रा राग वगैरह आते ना, चार नाम आते उसके। अब यहाँ बात अलग है, निज गोत्र का जो जघन्य में जघन्य भी अनुभाग वो द्विस्थानिक है, वो अनंत गुणा है। किससे अनंत गुणा है? आयु के जघन्य से। अब आगे बढ़ते हैं। अरे चौदहवे के अंत में कैसा होगा? देखो देखो ये कौन सी आयु ली है? लब्धिया पर्याप्त की आयु, तो वहां होगी क्या? लब्धिया पर्याप्त की आयु बांध के या तो वो सत्ता मरकर वहां जाएगा लब्धिया पर्याप्त में, उसकी सत्ता कहाँ होगी? लब्धिया पर्याप्त होगी या बांधने वाले की सत्ता में होगी? वो जो आयु वहां कैसे होगी? क्षपक क्षणि चढ़ने वाला आयु बांधता है क्या? उसकी तो मनुष्य आयु जो भोग रहा है उसकी सत्ता है। समझ में आई बात? देखो ये अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, अल्प बहुतो देखेंगे, हमको अभी मालूम नहीं अल्प बहुतो। जिसकी जहाँ सत्ता है उसको देखेंगे, पर आयु का जगन ने किस, उसके कंडीशन बताई ना कि आप क्या गोत्र का भी वहां लगा रहे हैं जगन्य श्रेणी में लगा रहे? हमको क्या चाहिए वहां पर कि उसकी? हाँ, समझ में आई बात? आप कहेंगे उपांत समय में निज गोत्र का अनुभव कितना कम हुआ होगा वहां पर, परंतु हम उत्तर प्रकृति की बात नहीं कर रहे, हम गोत्र इन जनरल देख रहे हैं। वहां निज गोत्र का उपांत समय में जब क्षय होता है उसका अनुभव बहुत घट गया होगा, परंतु वहां सत्ता में उच्च गोत्र है ना, तो उसके सामने उच्च गोत्र को कहेंगे ना गोत्र इन जनरल कहने, तो वहां दोनों की सत्ता है तो उसमें जो अधिक है उसको बताएंगे। ख्याल में आती है बात? अभी यहाँ निज गोत्र अकेला रहना चाहिए, वो कहाँ हमने देखा? अग्नि का एक वायु का एक में उसने उच्च गोत्र की उद्वेलना कर दी है और हत समुत्पत्तिक है, ऐसा वाला जीव लिया था। ख्याल में आती? ये थोड़ा ध्यान, यानी बारंबार भूल जाएंगे हम, बारंबार याद करेंगे हम उसको, और ये बात अभी महाबंधन में उपयोगी होने वाली है। मुझे तो लगता है ये पांचवें इसके बाद हम दवला के बाद डायरेक्ट महाबंध ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बंद के बाद वहाँ कंटिन्यू है ना। धवला तो अलग, जयधवला जुदी बात है, ये धवला से महाधवला कनेक्टेड है ना, वो छठा खंड है, ये हमारा अभी चौथा खंड चल रहा है, कौन सा, वेदना वाला, फिर वर्गणा खंड वाले उसकी चार पुस्तकें और आएगी, और फिर महाबंध नाम का छठा खंड लेना पड़ेगा अपने को। और ये आसान होगा, इस विषय से वो विषय लगता हुआ है, क्योंकि सातवें पुस्तक से हम बंद की बात देख रहे हैं सारे। सोलवे के बाद धवला का पूरा उसकी तो पांच खंड पूरे करेंगे ना। हमें 11 साल लगे हैं ना किसमें, धवला, जयधवला और महाधवला इतने, उसके पहले वो जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, वो बहुत साल से अपना चला, तब ये थोड़ा थोड़ा उसमें प्रवेश हुआ अपना। हाँ देखो यह हम पढ़ रहे थे। वाइट कार एंट्री हुई क्या उसकी? अच्छा है ना, अभी आप डायरेक्ट उसमें आके सुनती हो तो सुनते जाएंगे तो जरूर, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मुझे कैसे समझेगा, ऐसा रखना ही नहीं। देखो हमारी स्वाति बहन तो वहां बैठ कर अमेरिका से सुने, सभी धवला के उसने सुने हैं। आप तो सामने बैठती हो, आपको तो समझना आसान है। हाँ वहां पार्टी नहीं दिखती थी, अब दिखेगी। पार्टी समझते है? ये तो साउथ इंडियन पार्टी किसको कहते मालूम है? नहीं, ग्रैंड मदर को पार्टी कहते, क्योंकि हमारे पेशेंट थे ना, पार्टी पार्टी कहते थे। आपको मालूम है? हर एक भाषा की ये आता है ना, वो सत्य में अलग अलग भाषा का अपना अपना सत्य। हाँ अगर पाचर हिंदी में आगे यानी नेक्स्ट कहते हैं, और गुजराती में आगे यानी पहले वाली, पूर्व की बात कहते हैं। अलग अलग भाषा का अपना अपना अलग है। देखो अभी हम 46 को देखेंगे, गोत्र को हो गया 45 में, आयु से गोत्र का जगन्य वहां लिया भी। अब नाम वेयना भावदो जघन्य अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा नाम कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी, इसको 6 नंबर देना है। अब वो किसके होता है जरा फिर याद दिला रहे हमको। देखो हत समुत्पत्तिक क रह गया बीच में। देखो हत समुत्पत्तिक यानी जो एक इंद्रिय आदि में जाते हैं वो कर्मों का जो अनुभाग का घात करते चले जाते, स्थिति के भी घात होते हैं, कांडक घात होते हैं वहां पर। पंचेंद्रिय जीव एक इंद्रिय में चला जाता है तो वहां तो स्थिति घटती चली जाती, कैसे कोई अनेक स्थिति, कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति बांधकर वहां गया है तो वहां भी उनके कांडक घात होते हैं। जो कांडक घात जीव के श्रेणी में होते हैं वैसे कांडक घात एक इंद्रिय में होते हैं। अपने तो आश्चर्य लगता है, अनुभाग के भी कांडक घात होते हैं, तो घटते 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 हीन होता है, उसको कहेंगे हत समुत्पत्तिक। तो हत समुत्पत्तिक कर्म या कर्मा भी कहते उसको, यानी जिसने वो कर्मों का अनुभाग का घात किया है और परिवर्तमान मध्यम परिणामों से संयुक्त, जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव, उसके नाम कर्म का अनुभाग जघन्य होता है। देखो नाम कर्म जो है वो कैसी कर्म है, तो अघाती है, तो उसमें प्रशस्त भी प्रकृतियां होती है, अप्रशस्त भी होती है। अगर ये जो सूक्ष्म निगोद जीव, उसके भी संकलेश और विशुद्धि होती रहती है, अगर वो अति विशुद्ध में कर्म बांधेगा तो शुभ प्रकृतियां बांधेगी जो अनंत गुणा वाली होगी, और अति संकलेश में बांधेगा तो अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग मैक्सिमम बंधेगा। और यहाँ हमें तो जघन्य अनुभाग चाहिए, तो जघन्य अनुभाग कब बंधेगा, तो मध्यम परिणामों में बंधेगा, कैसे सोचना है। और उसमें भी वो अन्य जीव समाज को छोड़कर सूक्ष्म निगोद वाले की बात ली, उसके ऐसे भी अनुभाग कंपेरेटिवली कम बंधेगा। यह अनुभाग निज गोत्र के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुना होता है, क्योंकि सर्वत्र निज गोत्र के अनुभाग से अनंत गुना जो यश कीर्ति आदि शुभ प्रकृतियों का अनुभाग होता है उसका विशुद्धि के द्वारा घात नहीं होता। क्या कहते हैं, जैसे शुभ प्रकृति है तो विशुद्धि के द्वारा घात कैसे होगा उसका? एक बात, अति संकलेश को प्राप्त कराकर शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घात करने पर भी कोई लाभ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? कहेंगे तो संकलेश कराओ और शुभ प्रकृतियों का घात कराओ, तो संकलेश करेंगे तो अयशस कीर्ति का अनुभाग बढ़ेगा। तो कहते संकलेश से अयश कीर्ति आदि में अन्य भी लेना, अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि देखी जाती है। देखो सत्ता में पड़ा हुआ भी वो जो अनुभाग अधिक बनता है तो उसमें भी उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए यानी अति संकलेश और अति विशुद्धि वो निगोद वाले को भी नहीं ले सकते हम। तो क्या करना, जो परिवर्तमान यानी लौट लौट कर वही मध्यम परिणाम शुभाशुभ प्रकृतियों के अनुभाग की महान वृद्धि व हानि में निमित्त नहीं पड़ते, ना उनकी महान वृद्धि होती है ना महान हानि होती है। उनसे परिणत हुए जीव को उसका स्वामी बतलाया है, अतएव बहुत वृद्धि व हानि का अभाव होने से नाम कर्म की वेदना भावतः यानी अनुभाग की अपेक्षा गोत्र कर्म की अपेक्षा अनंत गुणी होती है, यह सिद्ध होता है। गोत्र कर्म में हमने कैसा देखा था, वो उसने उद्वेलना वाला लिया और अति विशुद्ध में वो नीच गोत्र को बंद कर रहा था, तो नीच गोत्र अशुभ है, अति विशुद्धि में उसका अनुभाग मिनिमम बंधा था। अब यहां मध्यम परिणामों में ले रहे हम, क्यों ले रहे हैं कैसे, क्योंकि दोनों ही वहां पड़ी है, सत्ता में पड़ी है, जैसे यश कीर्ति और अयशकीर्ति दोनों सत्ता में पड़ी है। तो अगर विशुद्धि में चले जाते तो यश कीर्ति का अनुभाग बढ़ेगा, संकलेश में जाएंगे तो अयश का बढ़ेगा, इसलिए मध्यम रखना है उसको। अब उससे कहते हैं वेदनीय वेदना भावदो जहनीय अनंत गुणा, ये 7 नंबर पर आया। केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण को एक साथ लिया था ना, इसलिए 8 कर्मों में से 7 नंबरिंग किए हमने। उससे भाव की अपेक्षा वेदनीय कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। शंकाकार पूछते हैं ये जघन्य वेदना याद आई ना कहां पर होती, जघन्य ऐसा था कि विदोवे वाला चौदवे वाला, हाँ तो उसमें तो कितना घात किया था 14 के अंत तक, यही पूछते हैं शंका। यतः वेदनीय कर्म का अनुभाग क्षपक श्रेणी में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घातों के द्वारा घात को प्राप्त हो चुका है, वेदनीय का कहने से अप्रशस्त कर्म का उसमें से। इसलिए जो चिरंतन अनुभाग की अपेक्षा, चिरंतन यानी संसार में लंबे काल का जो अनुभाग चल रहा था उसकी अपेक्षा अनंत गुणाहीन होता हुआ, और वो तो हमने नाम और गोत्र में जो अभी तो जो लास्ट में हमने नाम कर्म में देखा था तो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त की बात की थी, और यहाँ तो 14 के अंत समय में लेना है, तो हमें तो ऐसा लगे ना उसका अनुभाग कितना कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो शंकाकार यही पूछ रहे हैं कि उसकी अपेक्षा अनंत गुणाहीन होता हुआ अयोग केवली के अंतिम समय में एक निषेक का अवलंबन लेकर स्थित है, क्योंकि उसका अंतिम समय है ना, बस ये अंतिम समय जो उदय रूप ही है, अब ये खेरेगा तो जीव सिद्ध होने वाला है। वह भला जो क्षपक श्रेणी में घात को नहीं प्राप्त हुआ है, अभी उसकी कंपैरिजन किसके साथ किए है, अभी लास्ट में जो हमने नाम को देखा था उसके साथ है। तो जो क्षपक श्रेणी में घात को नहीं प्राप्त हुआ है और जो संसारी जीवों के कांडक घातों के द्वारा अपने उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणहीन है, ऐसे नाम कर्म के जघन्य अनुभाग से अनंत गुना कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी हमने जो जघन्य देखा था वह तो समत्पत्तिक वाला है, सूक्ष्म निगोध है वगैरह वगैरह, वो कंडीशन देखी थी, तो उसके और ये 14वें गुणस्थान की कंपेयर कर रहे हैं और उसको अनंत गुना क्यों बता रहे हैं? हमें तो नेचुरली ऐसा ही लगता है उसका हीन होना चाहिए। एक तो कैसे हो सकता है ये प्रश्न शंकाकार की, दूसरी बात है। दूसरी बात क्या है, संसार अवस्था में यश कीर्ति का उत्कृष्ट अनुभाग असात संज्ञा वाले वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग से अनंत गुना होता है। क्या कहते हैं, संसारी अवस्था में यश कीर्ति शुभ प्रकृति है, उसका अनुभाग असाता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग से अनंत गुना होता है। ऐसी अवस्था में वह क्षपक श्रेणी में संसारी जीवों के कांडक घातों के द्वारा घात को प्राप्त हुए असाता वेदनीय के अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुना हीन कैसे किया जा सकता है? किया जा सकता है, कहा जा सकता है। समझ में है प्रश्न? ये नहीं समझ। देखो देखो, कंपेयर किसके हो रहे हैं? नाम कर्म के जघन्य से वेदनी का जघन्य। वेदनी का जघन्य किसको लिया? असाता वेदनी के उदय सहित 14वें के अंत में जो विद्यमान है जीव, उसके लिए। अब ये पूछ रहे, और हमने नाम कर्म का जघन्य किसको लिया? वो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त खत समत्पत्तिक है, मध्यम परिणामों से वो बांध रहा है वगैरह, उसको लिया। और उसको क्यों लिया उसकी भी चर्चा की। अब वहां उसकी सत्ता में यश कीर्ति भी अशीष यानी शुभ प्रकृति भी अशुभ प्रकृति भी है। तो उस अवस्था में जो उसकी शुभ प्रकृति है वो अधिक होना चाहिए, और अभी का जो असाता है वो इतनी बार कांडक घात हुए, इतनी बार उसका घात होते होते उसका अनुभाग नहीं के बराबर है, फिर भी उससे ये अनंत गुणा क्यों कह रहे हैं? ये उनका प्रश्न है। प्रश्न समझ में? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि केवल अकषाय परिणाम ही अनुभाग घात का कारण नहीं है। क्या कहा? अकषाय होने पर ही वो कांडक अनुभाग घात होता, ऐसा नहीं, किंतु प्रकृतिगत शक्ति की अपेक्षा रखने वाला परिणाम अनुभाग घात का कारण है, उसमें भी अंतरंग कारण प्रधान है। क्या कहते हैं, प्रकृतिगत शक्ति यानी भले वो परिणामों के कारण वहां घात है, पर प्रकृति की अपनी कुछ घात होने की भी अपनी शक्ति होती है। अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग घात क्यों होता है? तो इधर प्रकृतिगत शक्ति अपेक्षा रखने वाला परिणाम अनुभाग घात का कारण है, यानी जीव का परिणाम उसके निमित्त कहेंगे, परंतु उसमें प्रकृतिगत शक्ति की भी अपेक्षा लगती है, उसमें भी अंतरंग कारण प्रधान है, प्रकृति का अपना। उसके उत्कृष्ट होने पर बहिरंग कारण के स्तोक रहने पर भी अनुभाग घात बहुत देखा जाता है। अभी जो प्रकृति की अपेक्षा ही रखकर उसकी अपेक्षा से जो अपना घात वहां जो हमने देखा था नाम कर्म का सूक्ष्म निगोद में उसका घात ज्यादा हुआ था, तो उसके वो क्षपक वाले का भी घात कम था, ये बात बता रहे। तथा अंतरंग कारण के स्तोक होने पर बहिरंग कारण के बहुत होते हुए भी अनुभाग घात बहुत नहीं उपलब्ध होता। यही तो कहते हैं ना, वो निमित्त से थोड़ा ही होता है, वो शक्ति वो कर्म की अपनी शक्ति उसमें वो मूल कारण है, उसका अंतरंग कारण। यतः यानी क्योंकि नाम कर्म संबंधी अनुभाग के घात के अंतरंग कारण की अपेक्षा वेदनीय संबंधी अनुभाग के घात का अंतरंग कारण अनंत गुणाहीन है। क्या कहना चाहते हैं, नाम कर्म में अनुभाग घात होने की शक्ति ज्यादा है, वेदनीय में अनुभाग का घात होने की शक्ति कम है, ये कहना चाहते हैं। उसका अंतरंग कारण, अंतरंग कारण उस कर्मों में लेना। अतः नाम कर्म के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा वेदनीय के जघन्य अनुभाग का अनंत गुणा होना उचित ही है। इस प्रकार जघन्य अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। जघन्य में पहला नंबर किसका लिया था, याद है लक्ष्मी? मोहनीय का। दूसरा अंतराय का। तीसरा ज्ञानावरण दर्शनावरण। चौथा आयु, आयु को लिया। फिर गोत्र, नाम अविवेदनीय। हाँ सूक्ष्म, देखो देखो बांधने वाला कौन है, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त। अब वो जो कुछ यथा योग्य वहां कर्म बांध रहा है। आपका प्रश्न जो है वो आपका एक प्रश्न है, ये कौन सा भी बांध रहा है उसकी सत्ता में दोनों है कि नहीं है, और वहां उसके संकलेश विशुद्ध दोनों होते रहते हैं। तो मध्यम परिणाम लिए उसने, मध्यम परिणाम लिए तो मध्यम परिणामों से अशुभ बंधे या शुभ बंधे विशिष्ट अनुभाग सहित बनता है। हो नहीं दो, परंतु उसमें जो मिनिमम होगा ना, यश कीर्ति में मध्यम परिणाम से ज्यादा होगा कि विशुद्धि परिणाम से ज्यादा होगा? यश कीर्ति का अनुभाग मध्यम परिणाम से अधिक होगा कि विशुद्ध से अधिक होगा? अधिक होगा, इसलिए वो अधिक वाला नहीं लेना, इसलिए मध्यम रखा है। और अति संकलेश लेते तो अप्रशंसन का अधिक हो जाता। हमको मध्यम ही लेना है, ना अशुभ में अधिक लेना है ना शुभ में अधिक लेना है। यथा योग्य, अभी उन्होंने बताया ना, जैसे यश कीर्ति अशिक कोई भी क्यों ना बंधे, सत्ता में तो दोनों पड़ी रहती है। इन जनरल नाम कर्म लिया ना, उसका जो कोई वहां पर होगा वो ले लेना। वहां पर वो जो बांध रहा है, वहां पर कौन बांध रहा है? सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त। क्या क्या बांध सकता है नाम कर्म की? दोनों को बांध सकता है, मनुष्य गति, तिर्यंज गति, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जाति, कुछ भी बांध सकता है। उसमें यथायोग्य ले लेना आप। हाँ अभी हम 5 मिनट है, अभी थोड़ा शुरुआत करते इसकी, उत्कृष्ट की। अभी तक हम जघन्य 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 सोच रहे थे, अभी उत्कृष्ट सोचना है। तो पहले में पहले देख लेते हैं कि उत्कृष्ट किसका कब होता है। उत्कृष्ट अनुभाग वाला वो ज्ञानावरण दर्शनावरण और चारों घातिया का बांधने वाला, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार जागृत और क्या क्या लगाए थे ना सब कंडीशन, ऐसा केवल उल्टा लेने से नहीं, सोच कर उल्टा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। वो बांधने वाला और फिर उसकी सत्ता वाला, ऐसा लिया था है ना। ये तो हो गया चार कर्मों का उत्कृष्ट। वेदने का उत्कृष्ट याद है? वेदने में साता वेदने का उत्कृष्ट है, क्योंकि दसवें के अंत में बांधा है वो बांधने वाला, और उतना ही अनुभाग कब तक रहेगा? चौदहवें के अंत तक रहेगा, चौदहवें के अंत तक। ये वेदनी का उत्कृष्ट देखा हमने। और फिर आयु का उत्कृष्ट, वो देवायु बांधने वाले सातवें गुणस्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट अनुभाग बांधता है, बाद में उसकी सत्ता बनी रहती है, वो अनुत्तर में वासी गएगा तो भी उसकी सत्ता बनी रहती है। ये आयु का हुआ। और फिर क्या हुआ, ये सब, ये चार हो गए, वेदनी हुआ, आयु हो गए। अब नाम और गोत्र का उत्कृष्ट कब होगा? हाँ यशस कीर्ति होता है ना। वो सब हो गए ना, देख देख लो देख लो, नाम और गोत्र का वहीं पर होगा। वो भी चार नंबर पेज में, वो तो वहीं पर होगा ना, दसवें के अंत में बांधा है, वही होगा उसको। देखो आयु की बात होगी ना, स्वामित्व से आयु की बात यहाँ है। नाम गोत्र के विषय में ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, कैसा? वेदने के जैसा, वेदने के जैसा ही नाम गोत्र का है। बंध की अपेक्षा से दसों के अंतर में, अंत में, और सत्व की अपेक्षा बाद में, क्योंकि शुभ प्रकृति है ना, अशुभ है तो घटती चली जाती है। शुभ है कहाँ है, क्योंकि वही उसका अनुभव बढ़ने वाला तो नहीं है, तो जहां बंधा है दसवें के अंत में वहां से लेकर चौदहवें के अंत तक कहीं पर भी होगा उसका। बंदर सत्व दोनों अपेक्षा लगाई थी। अब इसमें अल्प भूतव बताने वाले, अभी हमने किसके होती वो देख लिया, अभी कौन सा अनुभाग ज्यादा होगा, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट का कंपैरिजन चल रही है। देखो ये पेज नंबर 36 पर सूत्र पढ़ लेते हैं। उपकस्य पदेन सौवत्थोवा आवो वेयना भावदो उपकस्य। उत्कृष्ट पद का अवलंबन लेकर भाव की अपेक्षा यानी अनुभाग की अपेक्षा आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना सबसे स्तोक है। यानी आयु कर्म में जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो अन्य के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा कम है, ये कहना चाहते, क्योंकि वह भवधारण मात्र कार्य को करने वाली है। बस भवधारण करना इतना ही कार्य है उसका। 49 नंबर पर ज्ञानावरणीय दंशनावरणीय अंतराय वेयना भावदो उक्कसियाओ तिन्नी भी तुल्लाओ अनंत गुणाओ। भाव की अपेक्षा ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय की उत्कृष्ट वेदनाएं तीनों ही तुल्य होकर आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना से अनंत गुणी है। अभी इसका उत्कृष्ट जो अनुभाग है कैसा वाला होगा वो, हाँ वो चतुस्थानिक शैल वाला, संगी में वो बांधने वाला और जिसके सत्ता है। यतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों ही समान है, अतः केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के अनुभाग में भी समानता रही आवे, ये तो शंकाकार पूछ रहे हैं। किंतु अंतराय के अनुभाग को इनके समान मानना उचित नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत वीर्य में समानता नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत वीर्य में समानता स्वीकार की गई है। अभी इसकी चर्चा कल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कल हम फिर इसको जो शंका समाधान वहां से लेते हैं 49 के अर्थ में। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।